İran Radio Podcast.
दोस्तों जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। इसराइल का मेटास्टेटिस पॉडकास्ट का ये छठा एपिसोड है। दोस्तों ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। पिछले एपिसोड में हमने फिलिस्तीन और दूसरे देशों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायनी शासन के युद्ध की चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम इस सदी में फिलिस्तीनियों और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के युद्धों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 33 दिवसीय युद्ध की। 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिवसीय युद्ध छिड़ गया था। पश्चिम एशिया में ये इस सदी की शुरुआत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 2006 में साल की शुरुआत में ही इसराइल ने लेबनान पर भीषण बमबारी और गोलाबारी शुरू कर दी जो 33 दिन जारी रही। इस युद्ध ने फिलिस्तीनी मुद्दे को एक नया मोड़ दिया क्योंकि सीधे युद्ध में पहली बार इसराइल को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस युद्ध में भी इसराइल ने फास्फोरस और क्लस्टर बमों जैसे गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया। गजा और दक्षिणी लेबनान में नागरिकों पर भीषण बमबारी की। इस युद्ध में नागरिकों और आवासीय क्षेत्रों पर हमलों की संख्या हैरत अंगेज और चौंकाने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को झुकना पड़ा और शवों और युद्धबंदियों के आदान प्रदान पर उसे मजबूर होना पड़ा। इसराइल ने दो सैनिकों के शवों के बदले 4 मशहूर फिलिस्तीनी और लेबनानी कैदियों को आज़ाद किया और 199 शवों को लौटाया। अमरीकी सेना के सीनियर शोधकर्ता जेम्स ब्लिंटन ने अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा था, हिजबुल्लाह को कमज़ोर समझने और हिजबुल्लाह की युद्ध रणनीति को नहीं समझ पाने के कारण इसराइल ये जंग हार गया था। इसराइल के मेटास्टेटिस किताब के लेखक के मुताबिक इसराइली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो जंग के पहले ही हफ्ते में लड़ाई बंद करना चाहती थी। लेकिन अमेरिकियों का कहना था कि इसराइल पहले कुछ हासिल कर ले, उसके बाद युद्ध विराम होना चाहिए, इसीलिए ये जंग 3 हफ्ते जारी रही। लेकिन आखिर में अमेरिका को भी हथियार डालने पड़े और सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव 1701 पर मुहर लगानी पड़ी। जब युद्ध विराम हुआ तो दोनों पक्ष एकदम से बिल्कुल अलग परिस्थिति में थे। इसराइलियों ने अपनी अपमानजनक हार स्वीकार की, जबकि अमेरिका ने कहा कि इस युद्ध में कोई नहीं जीता। लेकिन इसके बाद से इसराइल के अजय होने का मिथ पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसकी वायुसेना के गुब्बारे की हवा भी निकल गई। वहीं मोसाद की जासूसी की शक्ति का भी भांडा फूट गया, जबकि इस युद्ध में पश्चिम और कई अरब देशों ने मिलकर जमकर इसराइल का साथ दिया था। अब बात करते हैं 22 दिवसीय युद्ध की। 27 दिसंबर 2008 को इसराइल ने गजा पट्टी पर भीषण बमबारी शुरू कर दी और इसके लिए हमास की बढ़ती ताकत को बहाना बनाया। ये हमले 18 जनवरी 2009 तक जारी रहे। इस युद्ध में इसराइल के 100 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और गजा पट्टी में हमास के ढांचे को निशाना बनाया। इसराइली सेना ने सैन्य और नागरिक लक्ष्यों में कोई अंतर नहीं किया और अंधाधुंध बमबारी की। दरअसल इसराइल का असली मकसद गजा पर एक बार फिर कब्जा करना था। गजा में हमास जैसे रेजिस्टेंस संगठनों ने घिरे होने और हथियारों तक पहुंच न होने के बावजूद स्वयं सेवियों की मदद से ज़ायनी सैनिकों को गजा में प्रवेश नहीं करने दिया। आखिरकार 22 दिन के बाद इसराइल ने गजा में प्रवेश की जिद छोड़ दी और वो पीछे हट गया। इस युद्ध में इसराइल ने स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हमले किए। इसके अलावा फॉस्फोरस बमों जैसे प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया। ज़ायनी शासन ने इन बर्बर हमलों में करीब 1500 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीदों में 400 से अधिक बच्चे और 111 महिलाएं थीं। इसके अलावा 4500 फिलिस्तीनी घायल हुए। दूसरी ओर इस जंग में कम से कम 100 ज़ायनी सैनिक मारे गए और लगभग 1000 ज़ायनिस्ट सैनिक जख्मी हो गए। हालांकि इसराइल ने इन आंकड़ों को बहुत कम करके बताया। ये ऐसा झूठ था जिसकी दफनाए जाने वाले शवों की संख्या से पोल खुल गई। इस जंग के दौरान यूएन ह्यूमन कमीशन ने इसराइल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट में IDP राहत एजेंसी की इमारतों पर हमला करने, अलकुद्स और अलवफा अस्पतालों को निशाना बनाने और वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करने के लिए इसराइल को दोषी ठहराया गया। 2012 में हमास के एक नेता की हत्या के बाद इसराइल ने सीमित लेकिन प्रभावी हमले की रणनीति के तहत 8 दिनों के दौरान गजा के सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 163 फिलिस्तीनी शहीद और 1300 अन्य घायल हो गए। इन सभी घटनाओं में एक समान जो चीज़ हम देखते हैं वो इसराइल का वहशीपन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियाँ उड़ाना है। इसराइल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का भी खुलकर उल्लंघन करता है और इसी तरह जेनेवा कन्वेंशन की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। वो हमेशा नागरिक और सार्वजनिक केंद्रों, शैक्षिक और चिकित्सा केंद्रों और निहत्थे नागरिकों पर कहर बरपाया करता है। हर लड़ाई में वो बच्चों और महिलाओं को बड़ी संख्या में निशाना बनाता है। आज की दुनिया में भी युद्ध के कुछ नियम और कानून हैं जिनका पालन न करने का मतलब जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना है, यानी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव। इस किताब के लेखक के मुताबिक अगर आप इसराइल को अनुचित तरीके से एक देश मानते हैं तो इस आतंकवादी शासन का युद्ध रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि वो अभी भी और हमेशा एक आतंकवादी और मानव विरोधी गैंग है। अब हम फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए प्रस्तावित कुछ उपायों और शांति योजनाओं की समीक्षा करेंगे। फिलिस्तीन में शांति के पहले कदम के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने काउंट फोल्के बर्नाडोटे को फिलिस्तीन के मुद्दे में मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया था। फोल्के बर्नाडोटे संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि थे और उन्हें फिलिस्तीनियों और ज़ायूनियों के बीच शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये पहली आधिकारिक मध्यस्थता थी। फिलिस्तीन के लिए विभाजन की योजना और उसके बाद ज़ायनी शासन द्वारा स्वतंत्रता की एक तरफा घोषणा के बाद हुई हिंसा के कारण ये कदम ज़रूरी था। एक मध्यस्थ के रूप में बर्नाडोटे 1948 में अरब इसराइल युद्ध के दौरान प्रारंभिक युद्ध विराम कराने में आंशिक रूप से सफल रहे, जिससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बसाने के लिए सहायता और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का मार्ग साफ हुआ। लेकिन 17 सितंबर 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने सहायक के साथ यरूशलम से संयुक्त राष्ट्र की एक गाड़ी में गुजर रहे थे। उसी समय ईस्टर्न गुरोह के आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। ये घटना कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ज़ायनी झंडा फहराए जाने के एक दिन बाद हुई थी। 1949 युद्ध विराम समझौता, ये एक शांति समझौता था जिसे 1948 के युद्ध के बाद इसराइल और मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के बीच दुश्मनी को समाप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस समझौते में ग्रीन लाइन नामक एक अवधारणा है जिसमें ज़ायनिस्ट रेजीम के साथी वेस्ट बैंक और गजा पट्टी को भी परिभाषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 242, इस प्रस्ताव को 22 नवंबर 1967 को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी, जिसके द्वारा इसराइल को 1967 से पहले की सीमाओं के भीतर वापस जाने और गोलान हाइट्स जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट के कब्जे को ख़त्म करने के लिए कहा गया था। हालांकि इसराइल ने दूसरे सभी प्रस्तावों की तरह आज तक इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया। एलोन योजना, ये शांति योजना यिगल एलोन द्वारा पेश की गई थी। एलोन का संबंध ज़ायनी मंत्रालय और पालमा इकाई की कमान से था। एलन प्लान के तहत जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट को इसराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित करना चाहते थे। इसके अलावा इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में द्रूज सरकार स्थापित करना चाहते थे। इस योजना का मसौदा एलोन ने जून 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के तुरंत बाद अरबों को प्रस्तुत किया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जॉर्डन घाटी के प्रमुख हिस्से को नदी से लेकर वेस्ट बैंक की सीमा की ऊंचाइयों के पूर्वी ढलानों तक मिलाना था, पूर्वी यरूशलम और गश एट्सबन से इसराइल तक। वेस्ट बैंक के शेष हिस्से को, के जहां ज़्यादातर फिलिस्तीनी आबादी और निवासी हैं, स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देना था या उनका वापस जॉर्डन में विलय करना आना था। इस योजना को जॉर्डन के राजा हुसैन ने अस्वीकार कर दिया। 1980 में एलोन की भी मौत हो गई, जिसके अगले वर्ष इजरायली सरकार ने गोलान हाइट्स कानून पारित किया और व्यवहारिक रूप से इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों को कब्जे वाले क्षेत्रों में शामिल कर लिया। रोजर्स योजना, तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम रोजर्स ने फिलिस्तीन में संघर्ष को समाप्त कराने के लिए 9 दिसंबर 1969 को एक शांति योजना पेश की। रोजर्स योजना में जो प्रस्ताव दिए गए थे उनमें 90 दिवसीय युद्ध विराम और 1967 की सीमाओं के भीतर इसराइल की वापसी शामिल थी। ये शांति योजना संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 242 पर आधारित थी और इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि उसकी स्वीकृति का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसराइल की पुष्टि था। लेकिन ज़ायनी शासन ने रोजर्स योजना के आधार पर मिस्र से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। कैंप डेविड समझौता, ये समझौता अरब इसराइल युद्ध के दोनों पक्षों के बीच पहला शांति समझौता था और इसी के साथ ही फिलिस्तीन के मुद्दे के समाधान के लिए ये सबसे विवादास्पद शांति समझौता भी था। इस समझौते पर 17 सितंबर 1978 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इजरायली प्रधानमंत्री मिनाखिम बेगिन ने अमेरिकी विदेश मंत्री जिमी कार्टर की मध्यस्थता से इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस शांति योजना के तहत मिस्र ने इसराइल से सिनाई रेगिस्तान वापस ले लिया था। बदले में इसराइल की क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता दी गई और इस शासन के जहाज़ों को स्वेज नहर से गुजरने की अनुमति मिली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस शांति योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र और PLO की भागीदारी के बिना की गई थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ भी थी। इसमें फिलिस्तीनी लोगों के बुनियादी अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया था। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी, आत्मनिर्णय का अधिकार और क्षेत्रीय संप्रभुता जैसे अधिकारों को इसमें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया था। फहद शांति योजना, सऊदी सरकार के तत्कालीन क्राउन प्रिंस फहद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने 17 अगस्त 1981 को पहली बार अपनी 8 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की थी। हालांकि ये योजना स्पष्ट रूप से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 242 और महासभा के प्रस्ताव 3236 के अनुरूप थी, लेकिन वास्तव में ये पीड़ित और दुखी फिलिस्तीनियों के हितों की रक्षा नहीं करती थी। इसीलिए इसे 25 नवंबर 1981 को अरब शिखर सम्मेलन में पेश किया गया, मगर इस पर सहमति न बन सकी। मूल संशोधनों के साथ इसे फिर से अरब नेताओं के सम्मेलन में पेश किया गया और आखिरकार 9 सितंबर 1983 को इसे पास कर दिया गया। इस योजना में पहली बार इसराइल को मान्यता देने की बात कही गई थी। रीगन योजना, ये 1 सितंबर 1981 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक शांति योजना के तौर पर प्रस्तुत की थी, जिसमें लेबनान से फिलिस्तीनियों की वापसी पर संतोष व्यक्त करते हुए शांति के लिए कदम उठाने की बात कही गई थी। इसराइल की सुरक्षा के अलावा रीगन की योजना में फिलिस्तीनी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई थी, इसीलिए ये स्पष्ट था कि इसे मंजूरी नहीं मिल पाएगी। साथ ही इस योजना को पेश करने के 13 दिन बाद लेबनान में ज़ायनी शासन के ईसाई सहयोगियों के नेता बशीर जमायल की हत्या कर दी गई और उसके कुछ दिनों बाद सबरा और शतीला में इसराइल ने फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया था। इस प्रकार ज़ायनी शासन किसी भी शांति योजना के कार्यान्वयन को असंभव बनाता रहा है। मैड्रिड शांति सम्मेलन 30 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में 2 दिवसीय वार्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सोवियत संघ और अमेरिका शामिल थे। उनके अलावा जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और इसराइल के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। ये वार्ता जमीन के बदले शांति के प्रस्ताव पर आधारित थी, लेकिन वो भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकी। हालांकि मैड्रिड वो स्थान बन गया जहां अरब देशों और फिलिस्तीनियों की कई लाल रेखाएं टूटी थी। मैड्रिड ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अरब देशों और ज़ायनी शासन को एक ही मेज पर बिठाया। मैड्रिड से पहले केवल अनवर सादात ने ज़ायनियों के साथ बातचीत की थी, लेकिन किसी भी अरब नेता में सीधे इसराइल से बातचीत की हिम्मत नहीं हुई थी। हालांकि मैड्रिड सम्मेलन में इस लाल रेखा को तोड़ दिया गया और ज़ायनियों के साथ आमने सामने बैठकर औपचारिक रूप से बातचीत हुई। ओस्लो संधि। ओस्लो में पहली बार स्वशासित फिलिस्तीनी सरकार के आधिकारिक नाम की घोषणा की गई। ओस्लो संधि पर 20 अगस्त 1993 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कई दौर की गुप्त वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। इस हस्ताक्षर के आधार पर पीएलओ ने घोषणा की थी कि वो ज़ायनी शासन के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देता है और ज़ायनी शासन ने इस संगठन को फिलिस्तीनियों के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। हालांकि फिलिस्तीनी समूह इस पहचान को स्वीकार नहीं करते। ओस्लो समझौते में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया गया था, जबकि इसराइल ने अपनी सभी मांगें पूरी करवा ली थी। उल्लेखनीय है कि ज़ायनियों ने दस्तखत करने के बावजूद किसी भी समझौते का पालन नहीं किया, न तो राजनीतिक रूप से और न ही आर्थिक रूप से। ओस्लो समझौता इस नियम का अपवाद नहीं था। फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को पीएलओ अपने प्रस्ताव की प्रस्तावना बनाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा न कर सका। जो क्षेत्र समझौते के समय फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियंत्रण में थे, 8 साल से भी कम समय में ज़ायनियों के कब्जे में चले गए। इसी के साथ ही 28 सितंबर 2000 को अलक्सा इंतफाजा की शुरुआत हो गई। अब्राम या इब्राहिम शांति योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान कुछ अरब देशों और इसराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया का समझौता हुआ। इसके तहत ज़ायनी शासन, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसमें फिलिस्तीनियों के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया गया और फिलिस्तीनियों ने इसे फिलिस्तीनी कॉज के साथ गद्दारी और फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा कदम बताया। 7 अक्टूबर 2023 को अलक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन के बाद इस योजना को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा।